अभिमान और आशिका की शादी की अगली सुबह राजवंश फैमिली के अंदर काफी तनाव भरा और बहस का माहौल था। आशिका और अभिमान अभी तक ऊपर थे जबकि बाकी राजवंश फैमिली नीचे। दिग्विजय पहले ये शादी अटेंड करने के लिए नहीं आए थे क्योंकि उनका अपने परिवार के साथ इतना जुड़ाव नहीं था। दूसरा, इस शादी से अभिमान खुश भी नहीं था, ये सोचकर भी उन्होंने इसमें शामिल होना सही नहीं समझा। लेकिन जिस तरह से अभिमन्यु ने बंदूक की नोक पर अभिमान और आशिका की शादी जबरदस्ती करवाई थी, उसके बाद विक्रांत ने तुरंत उन्हें मुंबई बुला लिया था। विक्रांत और आकाश एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे दिग्विजय को आशिका और अभिमान की शादी के खिलाफ भड़काने का। ये सब आप ही की शह का नतीजा है पापा। एक तो इतनी कम उम्र में उस लड़के को राजवंश फैमिली के सभी मेन बिजनेस को संभालने के लिए हेड बना रखा है, ऊपर से वो अपने छोटे बड़ों का सम्मान तक नहीं करना जानता है। अपने पूरे परिवार को उसने जेल में डलवा दिया, बस एक नक्श बचा था, मैंने सुना है उसे भी अरेस्ट करवा दिया गया है। आप क्या चाहते हैं, अपने परिवार की तरह वो हमें भी बर्बाद कर दे? विक्रांत ने दिग्विजय से तेज आवाज में कहा। उनकी बात पर हामी भरते हुए आकाश ने कहा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादू, कल रात आपको देखना चाहिए था किस तरह अभिमन्यु ने हम सबको ब्लैकमेल किया। सोचा था सिंघानिया फैमिली के साथ फाइनली रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इस लड़के ने शादी भी किसके साथ की? उस तृप्ति बजाज की बेटी के साथ। पूरा मुंबई जानता है कि अपने वक्त में वो औरत कैसी थी। आकाश का बड़ा भाई कुलदीप बिल्कुल चुप था, या यूं कहें कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिमान की शादी किसी के साथ भी हो। लेकिन सिद्धांत चुप बैठने वाला नहीं था, वो यही चाहता था कि अभिमान और आशी की शादी हो क्योंकि इसी में उसका फायदा था। उसने आशी के साथ मिलकर आगे के लिए काफी कुछ प्लान किया था। सिद्धांत जल्दी से बोला, मैं चाचू और दादू की बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ, वो लड़की मुझे अभिमान के लिए सही नहीं लगी और आशी ही ठीक थी। बहुत मुश्किल से हमारे सिंघानिया फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे होने को आए थे, लेकिन अभिमन्यु चाचू की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अभी भी बात को संभाला जा सकता है, यही बेहतर होगा कि अभिमान उस लड़की को तलाक दे और आशी से शादी कर ले। हाँ, यही सही रहेगा, अभिमान यहाँ आ जाए फिर हम उसके तलाक की बात करते हैं, आकाश ने भी सहमति जताई। जब से दिग्विजय वहां आए थे सब अपनी अपनी शिकायत लेकर शुरू हो गए थे। उन्होंने चिढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अभिमान कोई 2 साल का बच्चा नहीं है जिसका सही गलत तुम लोग डिसाइड करोगे। अगर उसे उस लड़की के साथ रहने में दिक्कत नहीं है तो वो उसे तलाक क्यों देगा? क्योंकि वो लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है दादू, आकाश ने सख्त आवाज में कहा। मैंने भी अपनी शादी में कॉम्प्रोमाइज किया था, मुझे निशा पसंद नहीं भी, फिर भी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों की वजह से मैंने उससे शादी की और आज तक उसे निभा रहा हूँ। अब अगर सिंघानिया फैमिली के साथ उस लड़की की वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तो उनका तलाक करवा देना ही बेहतर है। इस बीच अभिमान नीचे आ गया था और उसने आकाश की बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी और वो उनके पास आकर बोला, हाँ मुझे अच्छे से दिख रहा है कि आपने कितना कॉम्प्रोमाइज किया था। मेरी बीमार माँ को आप छोड़कर चले गए थे और अब यहाँ आकर रिश्तों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, दिग्विजय ने तेज और सख्त आवाज में कहा, यहाँ कोई बहस नहीं होगी, अभिमान और आशिका की शादी हुई है तो हम उसी से बात करेंगे कि वो तलाक चाहता है या नहीं। सब कुछ उनकी मर्जी पर टिका है, अगर वे दोनों इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते तो हम इसे खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। किसी के पूछने से पहले ही अभिमान ने अपना फैसला सुनाते हुए सख्त शब्दों में कहा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं आशिका के साथ ही रहूंगा। एक ही रात में तुम्हारे सुर बदल गए, आखिर उस लड़की ने क्या किया है तुम्हारे साथ? सिद्धांत ने अभिमान को घूरते हुए कहा। मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है, मुझे अपने रिश्तों की कद्र करना और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना आता है, आपकी तरह नहीं जो अपनी वाइफ को छोड़कर न जाने कहां कहां मुंह मारते फिरते हैं, अभिमान ने रूखे तरीके से जवाब दिया। जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे मामले में कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़ों के साथ बदतमीजी करो, इस बार कुलदीप ने अभिमान को डांटते हुए कहा। उन लोगों के बीच आपस में बहस और लड़ाइयां छिड़ी हुई थी, अभिमान ने अपना फैसला सुना दिया था लेकिन अभी भी आशिका का फैसला जानना बाकी था। ठीक है, तुम्हारे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होता, पहले हम उस लड़की से भी पूछेंगे, हो सकता है अभिमन्यु उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा, वरना इतने सालों तक तो वो अपनी शादी क्लेम करने के लिए नहीं आई, आकाश बोला। उसे यही लग रहा था कि रात को आशिका को धमकाने के बाद वो कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। लो वो भी आ गई, सिद्धांत ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया जहां से चलकर आशिका आ रही थी। लेकिन जैसे ही आशिका उनके पास पहुंची, उन सब ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी, जबकि आकाश उसे खो जाने वाली निगाहों से देख रहा था। अभिमान ने भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। उन सबकी निगाहें नीचे या फिर इधर उधर थी सिवाय आकाश के, जो आशिका की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। आशिका ने भी एक मिनट के लिए भी पलके तक नहीं झपकाई और वो उसकी तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। आशिका ने वेदांत की दी हुई ड्रेस पहनी थी जो शोल्डरलेस थी, उसकी की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान बने हुए थे, जो उसने जानबूझकर किसी मेकअप से हाइड नहीं किए थे। वे निशान साफ साफ गवाही दे रहे थे कि कल रात अभिमान और आशिका के बीच क्या हुआ होगा। आकाश ने उसे देखते ही गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली थीं। अगर घर में बाकी लोग मौजूद नहीं होते तो शायद इस वक्त वो आशिका को उसकी बदतमीजी पर सजा भी दे चुका होता। अजीब बेशर्म लड़की है, एक तो इस तरह के अजीब कपड़े पहनकर अपने ससुराल में अगले दिन कौन आता है, और ऊपर से बोलते हुए भी शर्मा रही है। विक्रांत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके दांत पीसते हुए कहा, इसकी हरकतें देखकर मुझे नहीं लग रहा कि ये हमारे खानदान के लायक होगी दादू। अब आपको खुद ही समझ आ गया होगा, मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूँ, सिद्धांत ने कहा। इससे पहले कि सिद्धांत अपना एक कदम भी आगे बढ़ाता, आशिका ने तेज और सख्त आवाज में कहा, क्या यहाँ मेरे और अभिमान के डिवोर्स की बात हो रही है? एक सेकंड, बिना हम दोनों की परमिशन के आप लोग हमारे डिवोर्स के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे भी कुछ लीगल राइट्स हैं और आप मुझे इस तरह कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब आपको हमारा फैसला पता चल गया होगा, किसी को हमारी शादी से प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हम दोनों अपने रिश्ते में खुश हैं और बेहतर होगा कि आगे से आप हमें किसी तरह की एडवाइस न दें, अभिमान ने आशिका का साथ देते हुए कहा और फिर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस मामले में डिस्कशन सिर्फ राजवंश फैमिली तक ही सीमित नहीं था। सिद्धांत ने जैसे तैसे मनाकर आशुतोष और काजल सिंघानिया को भी वहां बुलाया था, उनके साथ हाशी भी थी। जब वे उनके घर पहुंचे और उन्होंने आशिका की तरफ देखा तो आशुतोष की आंखों में बेइंतहा नफरत थी। काजल तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, जबकि आशी की नजर जब आशिका की गर्दन पर गई तो उसका मन किया कि वो जाकर उसका गला दबा दे। आशी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और मन ही मन कहा, मुझे अच्छे से याद है तुमने कभी मुझे टच तक नहीं करने दिया था, एक ही रात में इस लड़की के इतना करीब आ गए, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तृप्ति बजाज, अगर तुमने इस बार मेरे प्लान के हिसाब से काम नहीं किया तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ।
जैसे ही सिद्धांत की नज़र आशुतोष और बाकी की सिंघानिया फैमिली पर गई, वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा हुआ मिस्टर सिंघानिया आप मेरे कहने पर यहाँ आए, हम बस इसी बारे में बात कर रहे थे। हमारी फैमिली में हर कोई यही चाहता है कि अभिमान इस लड़की को तलाक देकर आशी से शादी कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस बारे में हमें कोई बात करनी चाहिए। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है और साफ दिख रहा है कि अब अभिमान इस लड़की को तलाक नहीं देगा, काजल ने तुरंत कड़वाहट भरे लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। तृप्ति ने ऐसे ही एक बार जबरदस्ती आशुतोष के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की थी और उनका रिश्ता तोड़ने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया था। वो तब कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन आज उसकी बेटी ने आशी की जिंदगी बर्बाद कर दी। काजल को यही लग रहा था कि जो काम तृप्ति नहीं कर पाई वो तृप्ति की बेटी ने काजल की बेटी की जिंदगी में कर दिया। काजल ने आशुतोष की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, आकाश ने जल्दी से कहा। हमारे परिवार के लिए हमारी बहू आशी है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल रात किसी ने जबरदस्ती अभिमान की शादी किसी से भी क्यों ना करवाई हो। हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानते हैं, अभिमान की शादी आशी से ही होगी, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। चाचू सही कह रहे हैं, सिद्धांत ने उसका साथ देते हुए कहा, हम बड़े सब डिसाइड कर लेंगे, अभिमान अभी छोटा है, इसे सही गलत की समझ नहीं है। सिद्धांत और आकाश ने जैसे तैसे करके सिंघानिया फैमिली को वहां रुकने के लिए मना ही लिया था और अब वे घर के लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। उनसे अलग आशिका और अभिमान थोड़ा दूर खड़े हुए थे। आशिका का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे यही डर लग रहा था कि वे सब मिलकर अभिमान को मजबूर कर देंगे और फिर आकाश जो चाहता है वही होगा। आशिका ने अभिमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में घबराहट थी। अभिमान ने उसका हाथ सहलाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, पर डरने की जरूरत नहीं है, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर यकीन रखो। आशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। इस बीच तृप्ति वहां पहुंच गई थी, आखिर यही तो उनका प्लान था। तृप्ति को देखकर सबके चेहरों के रंग उड़ गए थे, यहां तक कि आशिका भी उसे देखकर हैरान थी। तृप्ति ने उन सबके चेहरों की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मेरी मौजूदगी से कोई खुश नहीं है, पर अब ये मेरी बेटी का ससुराल है और शादी के बाद की कुछ रस्मों के लिए मुझे यहाँ आना ही था। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके सामने रहूं तो मैं आशिका से अकेले में बात कर लूंगी। इतना कहकर तृप्ति ने आशिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा हम बाहर चलते हैं। तृप्ति ने आशिका के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और उसे खींचते हुए बाहर गार्डन एरिया में ले जाने लगी। अभिमान भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन अगर वो उनके साथ जाता तो उसके पीछे से वहां क्या बात हो रही थी उसे कोई नहीं बताने वाला था। बस यही सोचकर अभिमान वहां रुक गया था। ऊपर से आशिका तृप्ति को अच्छे से संभाल भी सकती थी। वहीं बाहर गार्डन एरिया में आते ही आशिका ने तृप्ति का हाथ झटक दिया था, जबकि तृप्ति भी पूरी नफरत से उसकी तरफ देख रही थी। वो वहां आशिका को ले जाने के इरादे से ही आई थी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? अब क्या नया ड्रामा करने का इरादा है आपका? आशिका ने कड़वाहट से पूछा। चलो अच्छा है कि तुम अच्छे से समझती हो कि मैं यहाँ किस इरादे से आई हूँ, तृप्ति ने जवाब दिया। आगे बोलने से पहले तृप्ति कुछ सेकेंड्स रुकी और फिर आशिका के गले लग गई थी। आशिका हैरान थी कि आखिर तृप्ति ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे खुद से अलग करना चाहती थी, पर तभी तृप्ति ने तेज आवाज में खुशी से कहा, अच्छा हुआ हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जो काम सालों पहले मैं नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया मेरी बेटी। उस काजल ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था और आशुतोष ने भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वे हमेशा सच्चे प्यार की दुहाई देते रहते थे, उन्होंने कभी मेरे प्यार की इज्जत नहीं की और हमेशा मुझे दुत्कारते रहे। लेकिन आज उनकी बेटी के साथ वही हो रहा है, तुमने मेरा असली बदला लिया है। मुझे उस लड़की की आंखों में आंसू देखने थे, उनकी बेटी में। मैं उनसे नफरत करती हूँ, तुमने सच में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी तो ये सब शुरू हुआ है, तुम यहीं रहोगी और देखना कैसे वो लड़की तुम्हारे पति के लिए तड़पती है। आशिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक से तृप्ति के सुर क्यों बदल गए हैं और वो उसे इतनी प्यार से बात क्यों कर रही थी, जबकि उन्होंने किसी तरह का कोई प्लान नहीं किया था। जैसे ही आशिका ने तृप्ति को जबरदस्ती खुद से धकेल कर दूर किया तो उसकी नजर उनसे दूर खड़े आशुतोष पर चली गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि आखिर तृप्ति ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी।